नमस्कार, हम डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विभाग में हम आचार्य हैं और आज हम लोग प्रोग्रामिंग विद visualbasic.net इस विषय पर चर्चा सत्र का आरंभ करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, इसलिए इस विश्वविद्यालय के तकरीबन सभी कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों में इसका समावेश किया गया है, जैसे PGDCA में, BCA में, MSc में, MCA में यह कोर्स मूल रूप से उपस्थित है। तो हम प्रारंभ करते हैं चर्चा का एक परिचय से, जो कि visualbasic.net पर पहुंचने से पूर्व ये .net क्या है, इससे हम शुरू करेंगे। .NET यह एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो विंडोज के लिए बनाई गई है, और यह एक फ्रेमवर्क है जो कि सॉफ्टवेयर के विकास के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के लिए, विशेषकर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के लिए बनाया गया है। इसमें कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का समावेश है, जैसे विजुअल बेसिक, विजुअल C++, C# आदि। यह सारी लैंग्वेजेस इस फ्रेमवर्क के साथ जिस पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट ने सेल करना प्रारंभ किया था, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। जाहिर है, विजुअल का अर्थ है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की शुरुआत देखने से होती है कि कैसा प्रोग्राम का आउटपुट या इनपुट का फॉर्म दिखाई देगा, उसका विजुअल, वहां से उस प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। हमारा जो विषय है विजुअल बेसिक, तो ये बेसिक जो है मूलतः जो बेसिक लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सर्वाधिक सरल सिंटैक्स वाली भाषा मानी जाती है, उसका सिंटैक्स इस विजुअल बेसिक में उपलब्ध, उपयोग में लाया गया है। तो ये .NET फ्रेमवर्क किस तरह से भिन्न है इसके पहले के माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। यदि हम पहले के प्रोडक्ट्स देखें, जैसे सी देखें, C++ देखें, तो इन सारी लैंग्वेजेस में फाइनली जो प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर डेवलपर या एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेवलप करता है, वो उसको एक यूजर को जब देता है या बेचता है, तो उसका सोर्स कोड नहीं देता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फाइल में, एक बाइनरी ऐसी फाइल में जो कंप्यूटर पर सीधे चल सके, विंडोज कंप्यूटर पर सीधे रन चल सके, उस स्वरूप में बेचता है या देता है। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि वो जो ओरिजिनल प्रोग्राम था, जिसको सोर्स कोड कहेंगे, जो हायर लेवल लैंग्वेज में बनाया गया है, सी में या C++ में या किसी और भाषा में, उस सोर्स कोड को कंपाइलर के माध्यम से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ फंक्शंस जो कि लाइब्रेरी फंक्शंस से बुलाए जाते थे, उनका एग्जीक्यूटेबल स्वरूप भी, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई जा रही है, इनके अंदर समावेशित किया जाता था। इस आर्किटेक्चर में एक मेजर चेंज माइक्रोसॉफ्ट ने किया जब उन्होंने .NET टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसके अंदर हजारों बल्कि लाखों अलग अलग चीजों का सोर्स कोड समावेशित किया। इसमें फंक्शंस है, क्लासेस है, वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है। तो ये हजारों लाखों लाइंस ऑफ कोड बनाकर उपलब्ध किया प्रोग्रामर के लिए, और प्रोग्रामर को एक अधिकार दिया कि इस फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी में से जैसा वो चाहे अपने लिए चीजों का प्रयोग कर सके अपने प्रोग्राम के अंतर्गत। चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, हम बात करेंगे एक क्लास की। यह क्लास क्या है? यह एक ऐसा सोर्स कोड है, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अलग अलग कामों को करने के लिए टूल्स को बनाए गए हैं। और ये क्लास जो होता है, इस क्लास का एक नाम होता है, और इस क्लास की कई सारी प्रॉपर्टीज एवं कई सारी मेथड्स समावेशित होती है। प्रॉपर्टी यानी कि कुछ वेरिएबल के नाम जिनकी वैल्यूज प्रोग्रामर अपने हिसाब से दे सकता है या जो डिफॉल्ट वैल्यूज हो उनका प्रयोग कर सकता है। यह कार्य प्रॉपर्टीज को वैल्यूज देने का या उनको बदलने का प्रोग्रामर डिजाइन टाइम पे कर सकता है या अपने प्रोग्राम में ऐसी सुविधा कर सकता है कि रन टाइम के दौरान जो यूजर है उस प्रोग्राम का वो उन वैल्यूज को चेंज कर सके। और दूसरा एस्पेक्ट है मेथड। ये जो मेथड है ये कई सारी प्रोसीजर्स या सब प्रोग्राम्स उस क्लास के साथ लिखकर रखी गई है उस क्लास की लाइब्रेरी में यानी कि फ्रेमवर्क में। इन मेथड्स को भी यानी कि इन सोर्स कोड के प्रोग्राम्स को सब प्रोग्राम्स को या प्रोसीजर्स को भी प्रोग्रामर अपने कार्य को सुगम और सरल बनाने के लिए तेजी लाने के लिए इनका प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे हजारों क्लास की लाइब्रेरी .NET फ्रेमवर्क के भीतर समावेशित की गई है। और जो आर्किटेक्चर है यानी कि किस तरह से यह .NET फ्रेमवर्क कार्य करता है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा यूनिक है, बड़ा नया है। और इसने ही .NET फ्रेमवर्क को की टेक्नोलॉजी को बहुत पॉपुलर किया है। ये फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया है अपनी वेबसाइट के माध्यम से, जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूजर बिना कोई पेमेंट किए, बिना कोई भुगतान किए डाउनलोड कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। तो जो प्रोग्रामर है जिसने अपना प्रोग्राम डेवलप किया है .NET फ्रेमवर्क के माध्यम से, वो इस फ्रेमवर्क के फंक्शंस को, मेथड्स को, क्लासेस को यूज करेगा प्रोग्राम में, लेकिन जब वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल वर्जन बनाया जाएगा यानी कि इस प्रोग्राम को हायर लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, उस वक्त वह सोर्स कोड जो उस क्लास से संबंधित था उनको उस एग्जीक्यूटेबल फाइल में समावेशित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि रन टाइम के दौरान जो यूजर का कंप्यूटर है, यूजर का मशीन है, उस पर वह फ्रेमवर्क फ्रीली डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाएगा। तो यह प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो .NET में बनाया गया है वो उन प्रोसीजर्स को, फंक्शंस को, क्लास की प्रॉपर्टीज को जब भी कॉल करेगा उस फ्रेमवर्क के माध्यम से उनका लिंकिंग होस्ट कंप्यूटर पे जिस पे वो प्रोग्राम रन कर रहा है उन पर कर दिया जाएगा। ऐसा करने से जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना है उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा यदि आप उसकी कंपैरिजन करें इसके पहले के जो मेथड्स थे, प्रोग्रामिंग की जो मेथडोलॉजी थी उनके साथ यदि इसका कंपैरिजन किया जाए। तो दूसरा लाभ कि यह स्पीड अच्छी हो जाएगी, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, और यही कारण है कि ये .NET टेक्नोलॉजी इसको RAD के अंतर्गत RAD रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल के रूप में सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई। तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम बहुत तेजी से, बहुत सहजता और सरलता के साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो जो आर्किटेक्चर है इसके अंदर .NET के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR का प्रयोग किया जाता है। CLR एक ऐसा मॉड्यूल है जो एक्चुअली VB.NET के एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर रन करता है। जब एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं तो वो जो कोड है, सोर्स कोड, वो कंपाइल होकर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के जगह, ट्रांसलेट होने के जगह CLR के इंटरमीडिएट लैंग्वेज IL के अंदर ट्रांसलेट होता है। ऐसा करने से सोर्स कोड अलग हो जाएगा ताकि यूजर को सोर्स कोड का पता न चले। जो डेवलपर है, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सुरक्षा हो सके ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति उस सोर्स कोड को मॉडिफाई करके नया प्रोजेक्ट न बना सके। दूसरा लाभ इसके साथ मिल गया है कि ये जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है आईएल या माइक्रोसॉफ्ट आईएल एमएस आईएल, यह इंटरमीडिएट लैंग्वेज इस विजुअल स्टूडियो में जितने भी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग की इस्तेमाल की गई है उन सब का ट्रांसलेशन इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ही होता है। तो इससे एक दूसरा लाभ जो अपने आप माइक्रोसॉफ्ट को मिल गया, इस टेक्नोलॉजी को मिल गया, कि ये अलग अलग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट बना सकता है या कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट करके एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट जनरेट कर सकता है जिसमें कुछ मॉड्यूल्स विजुअल बेसिक के हो, कुछ मॉड्यूल्स विजुअल C++ के हो या C# के हो। तो इससे प्रोग्रामर को एक आसानी मिल जाएगी, मिल गई है रादर, कि वो अलग अलग कार्य, उन कार्यों की विशेषताओं को देखते हुए उससे समुचित, उसको ज्यादा उपयोगी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसका इस्तेमाल करके उस कोड को, उस प्रोग्राम को डेवलप कर सकता है। तो ऐसा करके प्रोग्रामिंग आसान, तेज, लो कॉस्ट की और इफिशियंट और विजुअली बहुत इफेक्टिव, बहुत इंप्रेसिव बन जाती है। और यह टूल, यह एनवायरनमेंट एक रैड रैपिड एप्लीकेशन टूल की सहजता से मान्यता प्राप्त कर जाता है। तो हमने जो बात की कि इसके अंदर बहुत सारी क्लास की लाइब्रेरी है, उदाहरण के लिए हम देखें तो हम सब माइक्रोसॉफ्ट के जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं, चाहे कोई एग्जांपल ले ले, तो उन एप्लीकेशंस में जो जो मूल माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी की रूटीन्स का प्रयोग किया जाता है वो सारी रूटीन्स को क्लास लाइब्रेरी के रूप में प्रोग्रामर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसके भीतर एक टूल बॉक्स है जिसके अंदर कई सारे टूल्स का समावेश है जो हर नए वर्शन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। 50 टूल्स है, 100 टूल्स है। इन टूल्स की कैपेबिलिटीज, उनकी पावर, शक्ति, उनकी गति, उनका अपीयरेंस हर नए वर्शन के साथ और अधिक शक्तिशाली बनता चला जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि हर कंप्यूटर के यूजर को अच्छी तरह से पता है, यदि उनकी हम बात करें तो वो टूल्स है एक कमांड बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, पिक्चर बॉक्स। यह नाम यदि आपको अपरिचित भी लग रहे हो तो भी विश्वास मानिए कि जैसे ही इस नामों का अर्थ या कोरिलेशन आप पाएंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये सब आपको पता है क्योंकि आपने किसी न किसी रूप में माइक्रोसॉफ्ट के किसी न किसी प्रोडक्ट को कंप्यूटर पर यूज किया है या यूज होते हुए देखा है। फिर चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो कोई वेब एप्लीकेशन हो जैसे ट्रेन का टिकट बुक करना, या और भी कोई, या कोई वेबसाइट हो जिसके ऊपर भी इन सारे टूल्स का प्रयोग बखूबी बहुत सरलता से आप करते आए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट .NET टेक्नोलॉजी इन सब मूल सिद्धांतों पर, इस मूल आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर इतनी पॉपुलर हुई है, इतनी सहज हुई है प्रोग्रामर्स के लिए और यूजर्स के लिए भी। क्योंकि प्रोग्रामर्स का काम आसान हुआ है, यूजर्स भी बहुत सहजता से इसको अफोर्ड कर पाते हैं, इसका उपयोग कर पाते हैं और इसके माध्यम से अपना वांछित कार्य कंप्यूटर के जरिए सहजता से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, .NET फ्रेमवर्क, उसके फीचर्स, CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, हमने देखा MSIL यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज हमने देखी, क्लास की लाइब्रेरीज हमने देखी। अब हम चलते हैं किस तरह से इसका प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की विजुअल स्टूडियो को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोप्राइटरी पैकेज है, आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यह आईडीई क्या है? आईडीई एक सेट ऑफ यूटिलिटीज के रूप में देखा जा सकता है। यह एक समूह है जो अलग अलग सर्विसेज एक प्रोग्रामर को उपलब्ध करके देता है ताकि प्रोग्राम का विकास आसानी से किया जा सके। जैसे इसमें कंपाइलर है जो हायर लेवल लैंग्वेज से इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का कार्य करता है ताकि वह सोर्स कोड जो विजुअल बेसिक में बनाया गया हो, VC++ में, C# में बनाया गया हो, वह यूजर तक यूजर की नजरों से बचाया जा सके। तो कंपाइलर और इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि हायर लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया गया है वो प्रोग्रामर के लिए तो सहज है क्योंकि इंग्लिश जैसी भाषा का उसमें प्रयोग किया गया है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जिसका एक ग्रामेटिकल रूल या सिंटेक्स रूल का सेट होता है। उनका उपयोग कर प्रोग्रामर अपनी बात, अपना उद्देश्य, अपना एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट सहजता से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स में लिख सकता है। कंपाइलेशन, लेकिन यह हायर लेवल की जो भाषा है, कंप्यूटर जो कि एक डिजिटल डिवाइस है जो सिर्फ बाइनरी भाषा का प्रयोग हार्डवेयर के तल पर कर पाती है, और आप जानते हैं बाइनरी भाषा में सिर्फ जीरो और वन, इन दो कोड्स का, इन दो सिंबल्स का ही प्रयोग होता है, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है। स्वाभाविक सी इसलिए कि कंप्यूटर मूलतः एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कार्य करती है वोल्टेज पर या करंट पर। तो वोल्टेज अगर है 5 वोल्ट है तो उसको कोडिंग किया गया 1, और वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है तो उसकी कोडिंग की गई 0। इससे उल्टा भी हो सकता है, लेकिन एक बार जो कोड तय कर दिया उसको फॉलो करेंगे। तो यह बाइनरी भाषा ही कंप्यूटर का हार्डवेयर समझ सकता है। हमने जो प्रोग्राम हायर लेवल में बनाया प्रोग्रामर ने, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, जो कि रन टाइम के वक्त लोकल मशीन पर फ्रेमवर्क से लिंकिंग करके वहां से सारे जो रिजॉल्व करने पड़ेंगे कॉल्स और उसके वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, फंक्शंस, उसको करने के पश्चात एक एग्जीक्यूटेबल कोड में के रूप में वह प्रोग्राम होस्ट मशीन पर रन होने वाला है। तो कंपाइलर पहली जरूरत है इस आईडीई की। इसके बाद कई सारी चीजें उसमें है, जैसे कि उसके अंदर एक एडिटर है। आपको अगर यूनिक्स अभी शायद ही ज्यादातर विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, लेकिन हिस्टोरिकली देखे तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको सी का प्रोग्राम लिखा था तो वो अलग कंपाइलर और एडिटर अलग, ऐसा सिस्टम था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी में पूरा का पूरा पैकेज है जिसके अंदर एडिटर भी है, और एडिटर बड़ा स्मार्ट टाइप का बन गया है, इंटेलिजेंट टाइप का बन गया है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो आगे चल के देखेंगे। तो एक शक्तिशाली एडिटर है। उसके बाद बहुत सारी यूटिलिटीज है, इतनी ज्यादा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक को स्क्रीन पर लोड करते हो तो उसकी सारी यूटिलिटीज की विंडोज अगर खोल दी जाए तो हर विंडो इतनी छोटी बनेगी कि उसमें कुछ पढ़ाई में भी नहीं आएगा। यही कारण है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद इसको सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कई सारी यूटिलिटीज को हाइड कर दिया है, एक टैब का इस्तेमाल किया है। जैसे एक फ्लैग है जो एक, जैसे एक पुस्तक है जिसमें 4 पेजेस है, एक बार में 1 पेज खुला है, बाकी के 3 पेज उस पेज के पीछे छिपे हुए हैं। अगर आप उसका सिर्फ लेबल या टाइटल दिखाई देता है जिसको आप क्लिक करेंगे तो वह पेज उभर कर आगे आएगा और पहले वाला जो उभरा हुआ था वो छुप जाएगा। तो बहुत इंटेलिजेंट इंटरफेस है, एडिटर है, बड़ा स्मार्ट है, इंटेलिसेंस जैसे इसमें एक शक्तिशाली विधा है कि यूजर, प्रोग्रामर जब प्रोग्राम टाइप करेगा तो उसके ऑटो कंप्लीट ऑप्शन आ जाएगा जो कि इंटेलिजेंट रहेगा। कोई भी सिस्टम का कीवर्ड जब वो टाइप करना शुरू करेगा, ए से टाइप करना शुरू किया तो ए से शुरू होने वाले सारे कीवर्ड्स जो वहां स्टोर्ड है वो उभर कर आएंगे ऑप्शंस के रूप में, जिनमें से वांछित कीवर्ड को प्रोग्रामर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता है। आईडीई में और जैसे शक्तिशाली डिबगर का समावेश किया गया है। डीबगर क्या है हम थोड़ा लेटर स्टेज में देखेंगे जब हम कुछ प्रोग्रामिंग्स बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बता दे कि यह एक शक्तिशाली यूटिलिटी है जो कि लॉजिकल एरर्स या रन टाइम एरर्स को लोकेट करने के लिए, सर्च करने के लिए, उनको सहजता से ढूंढने के लिए या करेक्ट करने के लिए या प्रोग्राम को और इफिशियंट बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली मदद के रूप में काम करता है। तो आईडीई एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर इन सब चीजों का समावेश है। इनका प्रयोग हम एक एक करके समय के साथ अलग अलग फेजेस पर देखते चलेंगे। विजुअल बेसिक यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह हमने कहा। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि यह ओप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। यह एक अलग प्रकार का प्रोग्रामिंग का सिनेरियो है, प्रोग्रामिंग का स्टाइल है जो कि दूसरी भाषाएं टॉप डाउन प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन भाषाओं के आर्किटेक्चर से अलग है और इसकी सफलता और सहजता पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रोमिनेंटली उभर कर सामने आई है। इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम के भीतर प्रोग्रामिंग जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से होती है, बने बनाए ऑब्जेक्ट्स है, उनकी लाइब्रेरी है और उन ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग आप अपने प्रोग्रामिंग में सहजता से कर सकते हैं। तो जैसे विजुअल बेसिक है, इसका जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको एक टूल बॉक्स मिलता है जिसके अंदर जो कि एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की या टूल्स की लाइब्रेरी होती है। इस टूल बॉक्स में से एक टूल आप सिलेक्ट करते हो और एक स्पेसिफिक टूल जिसको कि फॉर्म कहते हैं, FORM फॉर्म, जो कि एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या टूल्स को पेस्ट किया जाएगा, चिपकाया जाएगा, जो कि रन टाइम पर इनपुट देने के लिए या आउटपुट को दर्शित करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को दिखाने के लिए, एरर्स को दिखाने के लिए काम में आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पैराडाइम है इसमें ये टूल्स की लाइब्रेरी उपस्थित है, उपलब्ध है, ऑब्जेक्ट्स की लाइब्रेरी उपलब्ध है और ये ऑब्जेक्ट्स की जो लाइब्रेरी है, जो हमने कहा कि फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये है, उन ऑब्जेक्ट्स को बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एक ऑब्जेक्ट को बना के रखा है, इसका क्या अर्थ है कि एक ऐसी चीज को, एक ऐसे चीज यानी कि कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, प्रोग्राम कहे, सब प्रोग्राम कहे, उसको बनाकर रखा गया है। विशेष रूप से उसकी दो कंपोनेंट्स महत्वपूर्ण है, टूल की प्रॉपर्टी, उसके गुणधर्म जो कि 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। सुनने में हमें लगेगा कि 50 और 100 बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत साधारण सी चीजें हैं जो उस टूल के साथ जुड़ी हुई है। प्रॉपर्टीज के रूप में उस टूल को प्रदर्शित किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किया जाता है और इन प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सकता है डिजाइन टाइम पे या रन टाइम पे। ऐसा समझे कि पिक्चर बॉक्स ये एक टूल है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसा इसका नाम प्रदर्शित कर रहा है, यह एक ऐसा बॉक्स है, खाली डब्बा है जिसके अंदर हम एक चित्र को दर्शाने का कार्य सहजता से कर सकते हैं, पिक्चर बॉक्स। तो अगर पिक्चर को उसमें दर्शाना है तो उसकी प्रॉपर्टीज में कई सारी चीजें रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण रहेगी कौन से चित्र को आप वहां दर्शाना चाहते हैं, उस चित्र का नाम, उसके पूरे फॉर्मेट, उसके पूरे एड्रेस के साथ। तो वो उस पिक्चर बॉक्स में वहां पिक्चर, वहां चित्र लोड हो जाएगा। फिर तकरीबन सभी टूल्स या ऑब्जेक्ट्स जो कि स्क्रीन पे दिखाई देते हैं उन सब के साथ उसका लोकेशन रहेगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ज्योमेट्री में, उसके अंदर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स कि कहां पर उसका प्लेसमेंट है, जो कि बदल भी सकता है डिजाइन टाइम पे या रन टाइम पे। फिर उसकी लंबाई चौड़ाई, अगर वो रेक्टेंगल है तो कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है। फिर उसका फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का कलर, ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हर पिक्चर के, हर टूल के ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई रहेगी। और यह प्रॉपर्टीज जब वो उस ऑब्जेक्ट को फॉर्म पर पेस्ट किया जाएगा तो बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज जो डिफाइंड है वो प्रॉपर्टीज लेकर इनहेरिट कर वह टूल अपने स्वरूप की शुरुआत करेगा। किसी भी प्रॉपर्टी को रन टाइम में या डिजाइन टाइम पे प्रोग्रामिंग के माध्यम से एक्सेस करने के लिए उस टूल का नाम, उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट और उस प्रॉपर्टी का नाम इस रूप में प्रयोग किया जाएगा, जो कि एक वेरिएबल की तरह या कहे कि स्ट्रक्चर के एक मेंबर की तरह प्रोग्रामिंग की भाषा में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो ऑब्जेक्ट के या टूल के साथ जुड़ी हुई है वह है मेथड। मेथड के अंदर कई सारे क्रियाओं का या प्रोसीजर्स का, फंक्शंस का, सब प्रोग्राम्स का समावेश है। इनको भी डॉट उस पर्टिकुलर टूल का नाम, उसके बाद डॉट और उसके बाद उस मेथड का नाम, इस तरह से इसको भी एक्सेस किया जा सकता है। मेथड के लिए चूंकि वह प्रोसीजर रहेगी, उसको जब भी कॉल किया जाएगा वह इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या वह प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगी और उसका वांछित कार्य कर लेगी। तो ऑब्जेक्ट्स के रूप में आपको बहुत सारा प्री रिटन कोड प्रोग्रामर के प्रयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उपलब्ध कराकर दिया है। ये सारा कोड आप अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सहजता से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हमने देखा परिचय विजुअल बेसिक डॉट नेट का, उसका आर्किटेक्चर, फ्रेमवर्क, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टूल्स का इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग विजुअल स्टूडियो पर चलेंगे। उस वक्त उसका प्रयोग करने के लिए बेहतर होगा कि आप एक कंप्यूटर पर अपना एक्सेस जारी करें, प्राप्त करें और उस पर विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करके उसको रन करके विजुअल बेसिक को चालू कर इस चर्चा के अंदर अगली चर्चा में भागीदारी करें। थैंक यू।